یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری، وائز نمبر 420، ریکارڈڈ بائی مہندی مومن.
7th of January 1999, Vice in Bombay's Mira Road Jamaat Khana. Ya Ali Madad. Mirapur. Ab Jamaat ka maine deedar kiya. Aapko dekh ke bahut khush hua. مولا ہمیشہ آپ کو آپ کی آل اولاد کو حق پہ رکھے، سکھی آباد کرے. اللہم صلی اللہ محمد المصطفیٰ و آل محمد المصطفیٰ الی آخر الامان. میم محمد، میم محمد، ہر سکھ دے. تین لوگ کا جانے مار گئے رہے بھائی، جے کوئی ان کے مار گئے رہے. آترن گن سوجے نے آپ گت گن سوجھے آپ گت لے. مولانا حضرت امام کے سلوات پڑھو مومنوں. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اے مومنوں، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ایک اللہ کو مانتے ہیں کہ جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی بھاگیدار نہیں، اس کا کوئی سگا کٹمبی نہیں، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ اس کا بھائی.
Goodbye.
وہ بھی اللہ ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اس کو کوئی حاجت نہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں. ہم بندگی کرتے ہیں تو اس سے وہ بڑا نہیں ہو جاتا، اور اگر ہم بندگی نہ کریں تو وہ چھوٹا نہیں ہوتا. نیند کی، بھوک کی، اور بھی کوئی طرح کی اس کو حاجت نہیں، کمزوری نہیں. وہ خدا جس نے ہر شے پیدا کی، وہ خدا جو طاقت والا ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے. اس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں موت بھی وہی دے گا. کوئی چیز اس کی طاقت کے باہر نہیں. اللہ پاک اکیلا تھا، اس نے یہ سوچا کہ میں رحیم ہوں تو کوئی ہے تو نہیں کہ جس پہ میں رحم کروں. اللہ کا نام ہے خالق، خالق کہتے ہیں بنانے والے کو، پیدا کرنے والے کو، تو اگر کوئی ہے ہی نہیں تو وہ خالق کس کا بنے؟ وہ رب ہے پالنے والا، تو ہے ہی کوئی نہیں تو پالے کس کو؟ اس نے اپنی ذات پاک کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میں رب ہوں، رحیم ہوں، خالق ہوں، اپنی ان صفتوں کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے خلقت بنائی، اور خلقت کے اندر ان سے ہر طرح کی خلقت بنائی، ہر طرح کی. ہمارے پیروں نے ہمیں خدا کی بابت میں بہت سی چیزیں کہی ہیں جو ابھی تک کسی آدمی کو دنیا میں خبر نہیں پڑی. لگ بھگ 300 برس ہوئے یورپ کے اور ویسٹرن سائنٹسٹ جو ہیں انہوں نے بہت سی چیزیں ڈسکور کی، چاند تک پہنچ گئے، اور انشاءاللہ کچھ برسوں کے اندر جو مارس ہے وہاں بھی پہنچیں گے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے انسان کو ایسی شکتیاں دی ہیں کہ ہمیں ابھی تک اس کا پورا علم بھی نہیں، لیکن پھر بھی ہم کو ہمارے پیروں نے، اسماعیلی پیروں نے ہمیں ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں کہ جو ابھی تک سائنٹسٹوں کو پتہ نہیں لگا. سائنٹسٹوں کے اندر بڑے بڑے عقل والے، ہوش والے ڈسکورر پیدا ہوئے، نیوٹن جیسے، آئنسٹائن جیسے، ایسے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے جنہوں نے فزکس، ایسٹرولوجی، ایسٹرونومی، سائنس کی یہ برانچز اچھی طرح سے دیکھی. لیکن ان کو پوچھو کہ وہ جانور کے جو آنکھ سے نہیں دکھتے، جیسے کہ بیکٹیریا ہے، جرمز ہیں، ہمارے شریر کے سیلز ہیں، ایسا ہاتھ کو اوپر سے زور سے ایسا رگڑ دو تو لاکھوں سیلز نکل گئے جو ہمیں آنکھ سے نہیں دکھتے. بڑی پاورفل مائکروسکوپ ہوئے، کیسی پاورفل کہ ایک کا 10,000 گنا زیادہ بڑا سائز کر کے بتائے. ایسی پاورفل مائکروسکوپ میں دیکھیں تو ہمیں پتہ لگے میرے شریر میں سے اتنے سیلز نکل گئے، اور ہر سیل میں جان ہے، ہر سیل میں جیو ہے، کروڑوں سیلز ہمارے بدن میں نوے پیدا ہوتے ہیں، پرانے مر جاتے ہیں. ایسا ہی ہمارے گھروں کے اندر، گھروں کے باہر کروڑوں قسم کے بیکٹیریاز ہیں جو ہوا میں بھی اڑتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں. ہم جب رات کو سوتے ہیں 4-6 گھنٹے تو ہمارے منہ کے اندر کھایا پیا تھوڑا اثر ہوتا ہے تو وہ رات کو سڑتا ہے اور ہمارے منہ میں لاکھوں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں. صبح اٹھ کے ہم برش کرتے ہیں لیکن ہمیں بیکٹیریا دکھتے نہیں، پھر بھی کبھی ہم پاورفل مائکروسکوپ میں دیکھیں تو ہمارے منہ میں ایسے بے حساب بیکٹیریا جانور ہیں. بھلا جو جانور، یہ جیسے کہ بیکٹیریا، جرمز وغیرہ جو ہمیں آنکھ سے نہیں دکھتے، وہ کتنی جات کے ہیں آپ کو کوئی جواب نہیں دے گا. بڑے بڑے سائنٹسٹوں کو پوچھ لو کہ بھائی جو یہ نظر نہیں آتے ایسے جانور، ایسے بیکٹیریا کتنے جات کے، یعنی کوانٹیٹی وہ نہیں، اس کی قسمیں کتنی ہیں، ایک جات کے ہیں، 10 جات کے ہیں، کتنے جات کے ہیں. سنسکرت بھاشا میں ان بیکٹیریا کو جو آنکھ سے نہیں دکھتے اس کو کہتے ہیں یکش. یکش اس کو کولوکیل لینگویج کے اندر، کہ وہ لینگویج، لینگویج دو قسم کی ہے، एक वो लैंग्वेज है कि जो आम तौर पे सब लोग बोलते हैं, बाजार में भी मार्केट में भी बोलते हैं। एक वो लैंग्वेज है कि जो पढ़े लिखे प्रोफेसर एजुकेटेड लोग जो होते हैं वो लोग बोलते हैं। तो दोनों लैंग्वेज को, जो कोलोकियल लैंग्वेज है यानी सब लोग बोलते हैं ये कोलोकियल है, और जो लिटरेरी लैंग्वेज है कि जो प्रोफेसर और पढ़े लिखे बोलते हैं वो लिखने में चौपड़ी में आता है वो लिटरेरी लैंग्वेज होती है। तो हमारे पीरों ने गिनानों के अंदर कोलोकियल लैंग्वेज यूज की है, इसलिए कि लिटरेरी जबान जो है वो हाई क्लास के पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो बोलते हैं। उस लैंग्वेज के अंदर अगर हमारे पीर गिनान की रचना रचते हैं तो फिर आम लोग उसको समझने की शक्ति नहीं रखते। इसलिए हमारे पीरों ने इस शब्द को जिसको हम यक्ष कहते हैं, गिनानों में उनको कहते हैं जंक। जब हम गिनान पढ़ते हैं तो पीर माँ बाप कहते हैं 99 करोड़ 990 मिलियन जात के बैक्टीरियाज हैं। इनकी संख्या में इनके अंदर कितने ग्रुप्स हैं उसकी तादाद फिर कहते हैं 990 मिलियन जात के वो जंक या यक्ष हैं कि जो हमें आंख से नहीं दिखते। हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर से बैक्टीरिया निकलते हैं, हम अंदर सांस लेते हैं तो लाखों बैक्टीरिया हमारे अंदर जाते हैं। हमारे आखिर शरीर की रचना इन पे है। और इसमें यह कि जब हम खाना खाते हैं, मैं आपको ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि जो मुझे समझाना है वो आप समझ सको। हम जब ये खाना खाते हैं हमारे मुंह का जो रस है वो उसके साथ मिक्स होता है और खाने को ब्रेक करता है, यानी हजम करने के लिए उसके जो नजर न आने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसको तोड़ता है। और जब वो पेट में जाते हैं तो हमारा लिवर बाइल्स बना के पीले रंग का एसिड होता है वो हमारे पेट की तरफ भेजता है जिससे हमारा खाना हजम होता है। जब ये खाना मिक्सअप हो जाता है, हजम होता है, तो उसको फिर पेट नीचे उतारता है, आंतड़ों में जाता है। आंतड़े 47 फीट लंबे हैं। 47 फीट लंबे आंतड़ों को मरोड़ मराड़ के हमारे ये छोटे से पेट में खुदा ने रखा है। और फिर ये आंतड़े हैं उसमें से खून निकालते हैं, रस निकालते हैं, और उसमें से विटामिन्स निकालते हैं, मिनरल्स निकालते हैं, और जो बाकी गंद बच जाता है वो दूसरे दिन हमारे आंतड़े बाहर निकाल देते हैं। कैसी खुदा की रचना है। अभी मैंने ये बात इसलिए कही कि खुदा ताला ने कितनी जात की लाइफ बनाई, उसमें खाली बैक्टीरिया 99 करोड़ जाते हैं उसमें। फिर खुदा ताला ने वो जानवर बनाए कि जो पानी में रहते हैं, और पानी में रहते हैं ऐसे हैं कि जो पानी से बाहर नहीं निकलते, थोड़े ऐसे हैं कि जो पानी में भी रहते हैं पानी के बाहर भी आते जाते हैं रहते हैं, जैसे कि फ्रॉग्स हैं, डिटके हैं, जैसे कि कछुआ है, वगैरह वगैरह। भला ऐसे जानवरों की कि जिनका आधार पानी के ऊपर है, पानी में रहते हैं, उनकी कितनी जाते हैं। तो पीर कहते हैं 56 करोड़ 560 मिलियन जाते हैं, मछलियों की, डेटके की, वो जानवर के जो पानी में रहते हैं बाहर भी रहते हैं। अच्छा, अब वो जानवर के जो हवा में उड़ते हैं जैसे कि पंछी हैं, परिंदे हैं, ये हैं, तो ऐसे बहुत से जानवर हैं कि जो पानी में भी रहते हैं, उड़ते भी हैं, जमीन पर भी रहते हैं। और ये जो एम्फीबियंस हैं कि पानी में भी रहे, बाहर भी रहे, हवा में भी उड़े, वो कितनी जाते हैं। 32 करोड़ किन्नर 320 मिलियन। पीरों के ऊपर हम जान दे दे तो भी थोड़ी, पीर के ऊपर हम कुर्बान हो जाए तो भी उसके एहसान पूरे नहीं होते। हमको इतना इल्म दिया है लेकिन ये 4000 आदमी बैठे हैं, किसी को पूछो कि सब गिनाने पड़े। 72 शास्त्र हैं हमारे, 72 हमारे गिनानों की जो चौपड़ियां छोटी बड़ी, 72 शास्त्र हैं। बस सारा दिन खाओ पियो ऐश करो, शाम को जमात करने आया। हमने तो इस्माइली मजहब को समझा ही नहीं, क्या है इस्माइली मजहब। और आप भी क्या जानते हो, 10-20 गिनर में और क्या है, किसी को जमात में शौक नहीं, अपने मजहब को सीखने का कोई शौक नहीं। मौत हुआ तो जमात खाने में चले आए, लेकिन जमात खाने में आके क्या मिलता है वो कभी समझे। अच्छा, अभी खुदा ताला ने जानवरों को ऐसा इवॉल्व किया और इस टॉप के ऊपर लेके आया कि जिसको हम आज चिंपांजी कहते हैं। चिंपांजी की पूंछड़ी नहीं है, दुम नहीं है, छोटा सा निशान है, आदमी की तरह हंसता है। और अभी उसको ट्रेनिंग दी गई तो उसने अरिथमेटिक सीखा, छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन चिंपांजी अदा करता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक फार्मर ने हमेशा अपने जो रिटर्न भेजना था इनकम टैक्स को, उसमें जॉन नाम का एक आदमी लिखे। और जब इंक्वायरी आई कि ये जॉन कौन है, तो पता लगा कि जॉन तो एक चिंपांजी है और वो ट्रैक्टर के ड्राइवर के तौर पे $600 महीना उठाता है। इनकम टैक्स वाले ने केस किया, कोर्ट के जज और इनकम टैक्स वाले और दूसरे आदमी देखने आए। सेठ ने हुक्म किया जॉन को, ट्रैक्टर चलाओ। बराबर ट्रैक्टर चलाया, जहां जरूरत थी जहां नहीं थी सब देखा। कोर्ट ने पास किया कि इसके $600 हक है। चिंपांजी को ड्राइवर का लाइसेंस मिला। ऐसा ही एक इंसान जो पैदा हो जावे जंगल में और उसको कोई जात की तालीम ना दी जाए, उसमें और चिंपांजी में कोई ज्यादा फर्क नहीं। तो अब खुदा ताला ने इस चिंपांजी जिसको मिसिंग लिंक कहते हैं, इधर से लेके भला इंसान कितनी जात के। पीरों ने कहा कि बैक्टीरिया 99 करोड़ जात के, पानी के जानवर 56 करोड़ किस्म के, हवा के जानवर 32 करोड़ किस्म के। तो इंसान कितनी जात के। तो इंसानों को अगर हम कलयुग स्टार्ट हुआ उसके पहले द्वापर युग था और द्वापर युग 8,64,000 बरस लंबा, उसके थोड़ा पहले जो त्रेता युग था वो 12,96,000 बरस बड़ा। तो आदमी कभी शुरू हुआ, फिर कहते हैं 22.5 लाख बरस। अभी तक साइंटिस्ट ने ये इक्वेशन नहीं ढूंढी, पीछे है, बहुत पीछे। मैं आपके साथ बात करता हूं, अथॉरिटी से बात करता हूं। मैंने 24 बरस लगाए गिनानों की स्टडी में और ये सब चीजें समझ के मेरा दिमाग अर्श पे पहुंचे। हे मौला, ऐसा इल्म तूने हमें दिया पीरों की मारिफत, तो मैं आपको वहां जहां मैंने शुरू किया वापस ले जाता हूं। खुदा ताला ने अपनी रहमत, अपनी बख्शिश, अपनी जो क्वालिटीज हैं वो जाहिर करने के लिए उसने खलकत बनाई। और मैंने थोड़ा सा आपको ये जो बताया इसलिए बताया कि उस परवरदिगार ने क्या क्या बनाया है। پھر کہتے ہیں یہ جو درخت ہیں نا، جھاڑ ہیں، پلانٹس ہیں، گھاس ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، یہ بھلا دنیا میں کتنی جات کے ہیں؟ ابھی پیر گئے تھے اس کو کاؤنٹ کرنے کے لیے، نہیں دیدارو، پیروں نے کاؤنٹ ایسا نہیں کیا، ہمارے جو پیر ہیں وہ نبی محمد مصطفیٰ کا نور ہے، یہ رکھ تو بیٹا نیچے، ہمارے جو پیر ہیں وہ نبی محمد مصطفیٰ کا نور ہے، اور نبی محمد مصطفیٰ کون ہے؟ اللہ نے جب ارادہ کیا کہ میں خلقت بناؤں، کریٹ کروں، سرشتی بناؤں، تو اس نے اپنے نور میں سے محمد کا نور جدا کیا، اور محمد کے نور کو ایک انسان کا جامع پہنایا. یہ جو محمد کا نور ہے، ساری سرشتی کریشن محمد کے نور سے بنی ہے، اس لیے محمد کا نور ہے، وہ کریٹر ہے. تو خدا تعالی، قرآن کہتا ہے خدا الباری ہے. الباری کہتے ہیں روح کا پیدا کرنے والا. شریر کی کریشن محمد کے نور سے ہے، اور روح کی کریشن اللہ کے نور سے ہے. اس طرح خدا تعالیٰ نے یہ دو چیزیں رکھی، ہمارا شریر بھی ہے، ہمارے اندر روح بھی ہے، اور شریر کے اندر جو جیو ہے وہ روح نہیں، روح اونچی ہے، پاک ہے، نور ہے. جیو ہے وہ لائف فورس ہے، جیسے کہ گھاس کے تنکھے میں بھی جیو ہے. تو اس طرح خدا تعالیٰ نے محمد کے نور سے یہ ساری کریشن بنائی، اور اپنا نور روح کے طریقے انسان کو دیا، کیونکہ جانوروں میں وہ عقل نہیں کہ علم سیکھ سکے، لیکن انسان کو خدا تعالیٰ نے وہ عقل دی کہ وہ علم سیکھ کے خدا بن جائے، خدا بن جائے، آدمی عبادت کرے، نیکی کرے، اور اس درجے پہ پہنچے کہ خدا کے نور میں فنا ہو جائے. اس کو ہم اسماعیلی کہتے ہیں، واصل حق ہو گیا. جب ایک کو گزر جاتا ہے ہم کہتے ہیں یا مولا اس کی گناہ بخش دے، اس کو تو اصل میں واصل کر. یہ اصل میں واصل ہونا، ہم اس کے نور میں سے جدا ہوئے ہیں، ہمیں واپس اس میں جانا ہے. یہ کرنے کے لیے اسماعیلی مذہب ہے. وہ کہ دنیا کے تمام مذہب بھول چکے ہیں اس چیز کا، اس لیے بھول چکے ہیں کہ ان کو یاد کرانے والا کوئی نہیں. ہمارے اندر یاد کرانے والا حاضر موجود بیٹھا ہے. اے مومنوں، میں نے کیا کہا وہ سمجھے؟ کہ ہم سب خدا کے نور میں سے جدا ہوئے، اور وہ کیا چیز ہے؟ ہم اس کو روح کہتے ہیں. روح کا استھان برین میں، جہاں عقل کا استھان ہے، روح عقل کے اندر رہتا ہے. جو ہے وہ ہمارے ہارٹ میں رہتا ہے. ہم خدا کے نور سے جدا ہوئے، ہمیں واپس ادھر جانا ہے. تو ادھر جانے کے لیے میں آپ کو پوچھتا ہوں، جواب مت دینا کیونکہ اب یہ واضح ہو رہی ہے، میں آپ کو پوچھتا ہوں، گھر جا کے سوچنا کہ کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ خدا کے نور سے ہم جدا ہوئے؟ اگر آپ کو پتا ہے تو پھر میں واپس پوچھتا ہوں، تو پھر ادھر واپس جانے کے لیے آپ نے کیا سوچا؟ کھانا پینا کھایا، ٹی وی دیکھی، تھوڑا غصہ آیا تو مارا ماری کی، کوئی چیز من پسند نہیں ہوئی تو گالیاں دی، جھگڑے کیے، رات کو سو گئے، دن کو پھر وہی چین، بوڑھے ہو گئے اور مر گئے. کیا یہ ہمارا جیون ہے؟ کھا پی کے سو رہنا تو جانور بھی کرتے ہیں. ہم اسماعیلی ہو کے ہم نے کون سی بڑائی کی؟ ہم اس کے نور میں سے جدا ہوئے ہیں، ہمیں واپس اس کے نور میں جانا ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ اس کے لیے دو طریقے بنائے. एक तो ये कि बचपन से हम दुआ सिखाते हैं, जमात खाने आना, दुआ पढ़ना, गिनान सुनना, गिनान पढ़ना, फरमान सुनना, ये जो स्वामी शांत की हमारी चीजें हैं हम बच्चों को भी सिखाते हैं। तो क्या सारी जिंदगी ये बच्चे एक ही लेसन में पढ़े रहे? क्या इसके ऊपर कुछ समझने की चीज नहीं है हमारे मजहब में? है, और वो ये चीज है कि हम आंख बंद करके अपने मौला के हुक्म से दिया हुआ एक बोल जो खुदा का नाम है, जिसको हम इसमें आजम कहते हैं, सारी दुनिया सोई हुई है, हम जाग के हाथ मुंह धो के उस पैदा करने वाले को हम याद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, दी हुई उसकी नियामतों के ऊपर शुक्राना करते हैं, तंदुरुस्ती दी है, दो पैसे दिए हैं, रहने का मकान दिया है, कोई एक छोटी सी मोटर है या बाइसिकल है, उस खुदा ने हमें थोड़ी सी आबरू दी है, बाल बच्चे मिले हैं, क्या हमने कभी इसका शुक्राना अदा किया? ये सुबह का वक्त है, 3:30 बजे उठ के उसके साथ अपना कनेक्शन करो के मौला तेरे से मैं जुदा हुआ हूं, रास्ता भूल गया, तू रहीम है, गफूर है, बख्श दे मेरे गुनाहों को, मेरा हाथ पकड़ और मुझे रास्ते पे लगा। 4 बजे से 5 बजे तक हमारे दीन का सबसे बड़ा काम जो है वो ये है कि हम सुबह की इबादत करें। आप में से आधे आदमियों के पास बैतुल ख्याल का बोल है, कितने उठते हो? कितने? याद ही नहीं है। आज मैं आपको याद करा रहा हूं, अपनी असल को भूल चुके हो, सिर्फ दुनिया के अंदर मौज मजा करने और धम पछाड़ करने के लिए, गाली गलौज के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए, अपनी रोजी रोजगार के लिए ऊंचे सीधे सब तरह के धंधे करके खा पी के पेट पे हाथ पे के खराटे मारते हैं। बस ए मोमिनो जागो, उम्र के हिसाब से भी आप मेरे बच्चे हो, कोई कोई है कि जो मेरे से बड़ी उम्र का है, उठो, अपनी असल को मत भूलो, क्योंकि हम इधर हमेशा रहने वाले नहीं, कब कोई गुजर जाएगा किसी को पता नहीं, और अब से 100 बरस के बाद हमारे अंदर से एक भी नहीं होगा, हम सब मर जाने वाले हैं, हम सब उस मालिक के पास जाने वाले हैं, क्या मुंह दिखाएंगे? जिसके नूर से हमारा शरीर बना, जिसके नूर से ये जमीन बनी, आसमान बना, सूरज बना, चांद बना, सितारे बने, उसका नाम है मोहम्मद, रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से, उसके नूर से ये सारा जहान बना है, उसको याद करो, हर रोज एक तस्वीर निकालो, या मोहम्मद या मोहम्मद, और प्यार से निकालो या मोहम्मद। मौलाना हज़रत इमाम शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि ने बहुत दफा हमें फरमाया है, गिनानों में फरमानों में फरमाया है, मोहम्मद को याद करो, या मोहम्मद या मोहम्मद। मैंने पाठ क्या बोला है? मीम मोहम्मद है सुखदेव, मोहम्मद जो है वो सुख देने वाला है, उसके नाम से दिल में शांति हो जाएगी, उसके नाम से फिक्र व्याधि चिंता गम दुख दूर होते हैं। मीम मोहम्मद है सुखदेव, 3 लोग का जाने भेव, भूतकाल जिसको हम इंग्लिश में पास्ट कहते हैं, वर्तमान काल यानी के प्रेजेंट टेंस जो है, और हमारा भविष्य काल यानी के फ्यूचर, वो तीनों को जानता है, मोहम्मद को खबर है। तीन लोक का फिर और भी बात है कि ये मृत लोक है, हमारे पांव के नीचे पाताल है और फिर ऊपर आसमान है। तो स्वर्ग मृत पाताल, स्वर्ग यानी आकाश। तो मोहम्मद को ये भी पता है कि पानी के अंदर कौन सी दुनिया है और ये दुनिया क्या है और ऊपर की दुनिया क्या है, तो वो सब कुछ जानता है क्योंकि उसके नूर से सब कुछ बना है। उसको याद करो या मोहम्मद की तस्वीर निकालो। और जब हम सलवात पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा यानी अल्लाह को याद किया, सल्लल्लाह तू भेज अपनी सलामती शक्ति मोहम्मद पे और आले मोहम्मद पर। तो जब हम सलवात पढ़ते हैं तो हम आले मोहम्मद को भी याद करते हैं, मोहम्मद को याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। रूहानियत को पैदा करने के लिए, हमारे अंदर रूहानियत पैदा होए, हमारे अंदर रूहानी जागृति पैदा होए, हमारे दिल के अंदर सुकून शांति संतोष पैदा होए, उसके लिए सलवात पढ़ो। कमती में कमती बच्चों को सिखाओ कि एक तस्बीह 101 दाने की जरूर पढ़े। जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको बोलो 3 दफा सलवात पढ़े, यानी दो अभी 3 बरस का बच्चा है उसको बताओ सलवात पढ़ाओ, ये उसकी इबादत है। लेकिन जो बड़े हो गए, कम में कम 3 तस्बीहें सलवात की जरूर निकालो। सलवात पढ़ने से सुबह दोपहर और रात को सलवात पढ़ने से आपके ऊपर शांति उतरती है, आपके दिल के अंदर सुख मिलता है, संतोष मिलता है, आदमी के मगज की गर्मी कम होती है। हमारे अंदर बहुत से लोग हैं कि जरा सी बात से गुस्से हो जाते हैं, जरा सी बात से लड़ पड़ते हैं, जरा की बात से गाली गलौच निकालते हैं। उनके दिलों के अंदर शैतान बैठा है, उसको निकालना ये सैले में सैला रास्ता है। सलवात पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलवात खूब पढ़ो। मौलाना अली शमा बाप पहले पीर के जोमे में थे, हसन अली शमा बाप इमाम थे। जब ये हसन अली शमा बाप जामा पूरा किया तो इमामत का जामा अली शमा बाप को दिया और अली शमा बाप ने अपना पीरी जामा अपने बेटे पीर शाहबुद्दीन शाह को दिया। पीर शाहबुद्दीन शाह सुल्तान मोहम्मद शाह के बड़े भाई थे। तो जब इमामत का जामा मिला तो जमात खाने में शाह पीर हमेशा साथ आते थे, जिसको हम कांडी मोहल्ला कहते हैं, करीमाबाद। इसका नाम पहले कांडी मोहल्ला था, मेरा बचपन उधर गुजरा। जूना पुराना जमात खाना था, लकड़ी का बना हुआ, और ये जो अभी का जमात खाना है। हमारे यहां एक अदलखियानी सकीना बाई थी, अदलखियानी इसलिए कि उसका हस्बैंड गुजर गया तो आधा लाख रुपया छोड़ गया, 50,000। तो अदलखियानी नाम पड़ा क्योंकि वो जमाने में आधा लाख रुपया बहुत बड़ी चीज थी। तो अदलखियानी माँ ने विल की कि मेरा सारा पैसा जमात खाना बनाने के लिए देती हूं। तो ये जमात खाना सकीना भाई अदलखियानी ने बनाया। जब ये जूना जमात खाना था, मौलाना अली शाह एक दिन आए, पेशाबुद्दीन शाह साथ थे, मौला के हुजूर में हाजी कमड़िया नाम के एक 6.5 फुट ऊंचा 400 रतल का आदमी दाढ़ी रखी हुई, हजर इमाम का आशिक था। छोटी उम्र से हसन अली शाह माँ बाप की सेवा के अंदर था। 12 साल की उम्र में बाप के साथ मौला के घर जाके सेवा करते थे, अच्छी फारसी भाषा भी जानते थे। जमात बैठी है, जब ही मौला घोड़ा गाड़ी से नीचे उतरे ऊपर आए और जैसे ही मौला कुर्सी में बैठे तो बारिश शुरू हो गई, बड़ी जोर की बारिश हुई, आवाज सुनाई न देवे। हाजी कमरिया हाथ बांध के, भले सरकार देखो बारिश बहुत होता है, अभी सब लोग सुन रहे हैं कि इतनी बारिश है कि लोग बात नहीं कर सकते, इतनी आवाज आती है। फिर मौला उसको कहते हैं देखो तो बारिश बहुत है। देखो इमामों की बातों में भेद होते हैं। उधर गया, उधर खड़े खड़े नहीं कहा, हुक्म मानने की बात है। देखो कैसा, उधर गया खिड़की से वापस आया, खुदा बहुत बारिश हो रही है। आजी कमरिया देखो तो एक मिनट में कितने टीपे गिरते हैं। मन में सोचा ये कभी के काम कैसे मिला, लेकिन उधर गया ऐसा देखा कोई गिन सकता है। वापस आया कहते मौला एक मिनट में कितने टीपे गिरते हैं उसका हिसाब तो तू ही जानता है, हमारी शक्ति नहीं। जमात को बोलो, जमात को बोलो कि देखो अलहम मरियम है जमात, ये जो बरसात के एक मिनट में कितने बूंदे गिरती हैं उसका कोई हिसाब नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी पॉसिबल है। मगर जब तुम एक सलवात पढ़ते हो तो उसका इतना सवाब है कि फरिश्ते भी उसका हिसाब नहीं कर सकते। तो एक सलवात के पढ़ने में इतना सवाब है कि बारिश के टीपों से भी ज्यादा, फरिश्ते एक सलवात का हिसाब नहीं कर सकते। ऐ मोमिनों, आज मैंने आपने सलवात की बात की, इसके ऊपर जरूर अमल करना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपके घरों का माहौल एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा। जिस घर में झगड़े होते हैं घट जाएंगे, मैं कदाच बोलूं कि नहीं मिटेंगे नहीं, क्योंकि और भी बहुत से गुनाह हैं, लेकिन सलवात पढ़ने से घरों के झगड़े घट जाएंगे, दिल नरम हो जाएंगे, सुख शांति सुकून और संतोष मिलेगा, और आहिस्ता आहिस्ता बदियां बुराइयां दो पांच दस बरस में घटती जाएंगी, और आपके अंतर के अंदर मोहम्मद का प्यार जागेगा। मोहम्मद कौन है? रूहानी माँ है, और रूहानी पिता अली है। अली तेजस्वी है, ताकत वाला है, मोहम्मद नरम है, दयालु है, रहम वाला है, मर्सीफुल है। मीम मोहम्मद है सुखदेव, सुख देने वाला है, तीन लोक का जाने भेद सब कुछ उसको खबर है। जे कोई इनके मार्ग रहवे, कोई भी तुम्हारे में से मोहम्मद के रास्ते पे अगर रहवे तो उसको तीन गुण सूझे और आप गत ले लें। तीन गुण सूझे, कुरान शरीफ में अल्लाह ने इंसान के तीन जात के स्वभाव का जिक्र किया है। अल्लाह कहता है आम लोग जो हैं उनका जो नफ्स है वो नफ्स अम्मारा की हालत में है, खाया पिया लड़ाई झगड़ा किया मरा मरी की धम पछाड़ की सो गए, स्वार्थ स्वार्थ लालच। मगरूर आई और टेम्पटेशन आकर्षण, कोई चीज पसंद आई मेरे को चाहिए, अरे भाई तेरे लिए अच्छी है कि नहीं, नहीं मेरे को चाहिए, कुछ भी मिला मगरूरी हो गई, जो चीज ना पसंद हुई झगड़ा हुआ। हमारा जीवन इसमें से ही पसार होता है तो मौत के बाद क्या होगा? मजहब हमको यादें दिलाता है, मजहब हमको जगाता है कि तुम सोचो कि उधर जाओगे तो क्या होगा, साथ क्या लेके जाओगे। अल्लाह कहता है आम तौर पे लोग, अक्सर लोग जो हैं उनका नफ्स अम्मारा है, खाया पिया, कपड़े लते पहने, घूमे फिरे, स्वर्ग व्रती हुई, मर गए। लेकिन जो थोड़े अकल वाले हैं वो ऊंचे होते हैं, उनका क्या काम है, नफ्स लवामा। नफ्स लवामा ये है कि इंसान ढूंढ के निकाले मेरे लिए कौन सी चीज अच्छी है, और वो सिलेक्ट करके खाता पीता और यूज करता है, वो पहले से अच्छा है। मैं इसका ज्यादा विस्तार देने जाऊंगा तो आवाज बहुत लंबी हो जाएगी। तीसरा वो है कि जिसको हम कहते हैं, अल्लाह फरमाया नफ्स मुतमईना, इंग्लिश में कहते हैं सेटिस्फाइड सोल, संतोषी, इत्मीनान, सुख शांति, आधा मिला तो भी खुश है, सारा मिला तो भी खुश है, भूख है दो रोटी की लेकिन आधी मिली है तो वो गड़बड़ नहीं करता, अच्छा आधी तो आधी सही, लेकिन वो नीचे वाले जो हैं वो गड़बड़ करेंगे। ये तीसरा जो है ये गड़बड़ नहीं करेगा। हमको तीनों स्टेप्स की, तीनों मंजिल की समझ आ गए है, ये मोहम्मद से मिलती है, मोहम्मद की दुआ से मिलती है। ये जो दरूद पाक सलवात है जिसके लिए मैं आज आपको इतना कह रहा हूं, मैंने आज कहा इस चीज को याद रखना, और अगर करोगे तो तीन चार महीने के अंदर आपको अपनी लाइफ में फर्क फील करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज आपने सलवात पढ़ी, दूसरे दिन आपके घर के ऊपर $1,000 का एक पैकेट लिखा पड़ा होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अंदर का जो गंध है वो सागवान से निकलता है। तो मीम मोहम्मद है सुखदेव, तीन लोक का जाने भेव, जे कोई इनके मार्ग रहवे त्रैगुण सूझे आप गत लहवे, उसको हमारा पास भी सूझे, ये भी सूझे, फ्यूचर भी सूझे। और आप गत लेवे का मतलब ये है कि उसको इस बात की बरकत मिले और अपने ऊपर उसको यूज करे, यानी कि अमल में लावे। हमारा ये जो मजहब, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हमारे मजहब में खजाने कितने हैं, 99 करोड़ शंख, 56 करोड़ मेघमाला, 32 करोड़ किन्नर। अभी मैं आपको ये कह रहा था कि आदमी कितने जात के, तो फिर कहते हैं 33 करोड़ जात के। हम इधर नाम डाल देते हैं देवता का, और नाम पीरों ने रखा है 33 करोड़ देवता। देवता कहते हैं एंजल्स को, फरिश्तों को, देवता यानी फरिश्ते। अरबी जबान के अंदर मलिक कहते हैं, मलाइका कहते हैं, संस्कृत में देवता कहते हैं। तो देवता ये है कि गए इतने करोड़ों लाखों सालों में जो इंसान हो गए, इंसान खाली शरीर का नाम नहीं, क्योंकि शरीर तो बंदर जैसा है, हमारा शरीर बंदर जैसा है, बंदर को पूछड़ी है, हमको पूछड़ी नहीं, इसी तरह से चिंपांजी को भी पूछड़ी नहीं, बात शरीर की नहीं, इंसान की बात है। कितनी किस्म के इंसान है, तो कहते 33 करोड़ किस्म के, 330 मिलियन टाइप्स के इंसान है। एट ए टाइम इस वक्त दुनिया के अंदर 6 बिलियन आदमी है, उससे थोड़े ज्यादा है, यानी कि 100 करोड़ का 1 बिलियन होता है, तो 600 करोड़ 6 बिलियन आदमी हैं। जब ही शुरुआत हुई 22.5 लाख बरस पहले आदमी की शुरुआत हुई, तो एक आदमी हुआ। चलो आज मैं आपको थोड़ा और भी बोल दूं, कभी काम आवे। ये जो चिंपांजी है ना, बंदर, ये बंदर लाखों थे, इनके अंदर अभी वो मिस हो गया है कि जो चिंपांजी से थोड़ा ऊंचा था, मैंने आपको बताया कि चिंपांजी में इतनी अक्ल है कि अगर उसको सिखाया जाए तो ट्रैक्टर का ड्राइवर बन जाता है। तो उसको पता होना चाहिए कि गियर किधर है, ब्रेक किधर है, एक्सेलरेटर किधर है, और उसको वो जो स्टीयरिंग फिराने का भी इल्म होना चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो आज से 22.5 लाख बरस पहले किसी एक चिंपांजी माँ को बच्चा बड़ा हुआ तो दूसरों से ज्यादा अकल वाला हुआ, बोलता था, हंसता था, और वो ऐसा नहीं कर सकते थे दूसरे बच्चे। ये पहला इंसान था, ये पहला आदमी था कि जिसको खुदा ताला ने किसी चिंपांजी माँ के पेट से पैदा किया। क्या हम इसको आदम कहें? हाँ, आदम का मतलब मिट्टी में से पैदा हुआ। हम सब आदमी हैं, आदमी यानी मिट्टी से पैदा हुआ। तो क्या वो आदम था? नहीं देवदार, वो जो आदम हमारे ख्याल में है ये आदम वो नहीं था। और हम जिसको आदम शफीउल्लाह कहते हैं कि जो अल्लाह के नबी थे, वो भी ये नहीं है, क्योंकि जो अल्लाह के नबी आदम थे उसको तो लाखों बरस हो गए। 22.5 हजार बरस की, 22.5 लाख बरस की बात नहीं है। वो आदम तो बहुत थे और उसकी बात मैं आज नहीं कर सकता। ए मोमिनो, इस जमीन धरती के ऊपर 1 लाख बरस का एक साइकिल है और ये जमीन हर 1 लाख बरस के बाद मर जाती है, फिर पैदा होती है। अभी मरने का शब्द बोल के आप थोड़े कंफ्यूज हो गए। मर जाती का मतलब ये है कि इस धरती के ऊपर जो लाइफ है वो मिट जाती है। फिर से एमीबा से, एक सेल से फिर इसमें शुरू होता है। हजारों साल के बाद फिर वो इंसानों के रूप में आते हैं, संस्कृति आती है, साइंस आती है, और फिर अपने ही पैर अपने हाथ से काट देती है। यानी ठहरो, ये साइंस जो आज है ये भी 100-150 बरस में आदमी को बर्बाद करके रहेगी। तो इस दौर में हर 1 लाख बरस के अंदर इसकी साइकिल होती है। तो ये जिस आदम का मैंने आपको नाम दिया है, जिसको 22.5 लाख बरस हुए, ये इस साइकिल का आदम है। तो इस तरह से इंसान को खुदा ने अक्ल होशमंदी वगैरह जो दी हुई है, तो हम इंसान हैं, आदमी भी हैं। आदमी सब है, इंसान सब नहीं। इंसान उसको कहते हैं कि जिसमें अक्ल यूज करने की शक्ति हो। अक्ल सब में है, आदमी में भी है, लेकिन जो अक्ल को यूज करता है उसको इंसान कहते हैं। और हमको हमारे पीरों ने यही कहा, जागो जागो भाईड़ा मुसारण विहानी, उठो जागो। किस तरह से रात गुजार रहे हो? रात का मतलब इग्नोरेंस, नादानी, बेसमझी। मैं आज इस वक्त आपको जगा रहा हूं। हम इस्माइली हैं, शाफिर को मानते हैं, मोहम्मद के नूर की परस्तिश करते हैं, अल्लाह के नूर की इबादत करते हैं। हमारा हिदायत करने वाला अली नबी, कि जिसको हम हजरत इमाम उसका नूर कहते हैं, वो हमें हिदायत करता है। आज की मेरी बातें सुन के अपने अक्ल का उपयोग करो कि मैं कौन हूं, मुझे कहां जाना है, मुझे क्या करना चाहिए। मैं इस्माइली हूं। सारी दुनिया के अंदर जितने भी धर्म मजहब हैं, जीता जागता उनका गाइड कोई नहीं। हमारे मुसलमान भाई 1400 बरस पहले के मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानते जानते हैं, लेकिन आज अगर दो मुल्लाओं में झगड़ा हो जाए तो फैसला कौन करे? उनमें कोई नहीं। क्रिश्चियनों में कोई नहीं, हिंदुओं में कोई नहीं, सारी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो उम्मत है वो चीन है, कि जहां 1 बिलियन 1.25 बिलियन लोग बसते हैं। कौन है उनकी अंदर समझाने वाला? कोई नहीं। एक हम है जो हम अपने दिल को सुधियारा और फखर से कहते हैं ये मौला बैठा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मौला का हुक्म आवे, हमारे सर नीचे है, उसके हुक्म पे अमल करते हैं। ये हमें दीन और दुनिया की दौरबानी देता है। और मैं आपको 150 वर्ष पीछे ले जाऊं, हसन अली शाह माँ बाप ईरान छोड़ के हिंदुस्तान आए 1842 में, 1842 में मौलाना हसन अली शाह और फिर अली शाह हिंदुस्तान आए। और ये प्रॉमिस था 600 वर्ष पहले पीर सदर दिन के साथ, कि जिसने कहा या मौला के तू जम्पू द्वीप में आ, और मौला ने कहा मैं आऊंगा, तो हसन अली शाह के जमाने में आया। जब इधर आया तो उसके मुरीदों की हालत क्या थी, कि 100 में से 2 आदमी थे जिसके पांव में जूते या चंपल थी। 100 में से 2 आदमी के पांव में जूते थे, 100 में से 10 आदमी थे कि जो नया कपड़ा पहन सकते थे, 90% लोग ऐसे थे कि दूसरा कपड़ा नहीं था, नहाते वक्त अपने कपड़े धो के वही पहन लेते थे। और हमारे पास घर में पकाने के लिए लकड़ी खरीदने या कोलसे खरीदने के पैसे नहीं थे। तो हमारी ये बेटियां बहनें उस जमाने के अंदर बाहर जाके गाय का भैंस का छेन इकट्ठा करे, उसको सुखा के अपने घर में सिगड़ी में डाले और कोलसे और लकड़ी की जगह जला के खाना पकाए। ये हमारी हालत थी। मौलाना हसन अली शाह माँ बाप रो पड़े। जूनागढ़ के वारस वजीर इस्माइल गांव जी को कहा मुझे हर इस्माइली के घर जाना है, तो हाथ बांध के कहते मौला ये पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं? कहते खुदावंद उनके घर जाने जैसे है नहीं, तू बादशाह है, मैं अपने बच्चों के घर जाऊंगा। खुदावंद उसके घर जाके कोई बैठने की जगह नहीं, मौला ने कहा मुझे जाना है। शाहपीर मुखी कमरिया वजीर इस्माइल के साथ अपने इस्माइलियों के घरों में गए, क्योंकि इसके पगले आवे घर में तो बरकत मिले, और मौला यही चाहता था कि मैं इनके घरों में जाऊं, मैं दुआ दूं। जब पहले घर में गए तो घर वाले रो पड़े। वारस कहते हैं बापू हाँ तमे मौला ने अहियां ले आया, आ घर एना लायक न थी। और हसन अली शाह माँ बाप कह रहे मुझे कुछ खिलाओ। क्या खिलाओ? है ही नहीं कुछ। वजीर कहते हैं तुम्हारा घर में कहीं न थी, कहीं चोखा न बेचा दाना न थी, तो एक डबले में थोड़े एक चमचे जितने चावल पड़े थे। मौलाना हसन अली शाह ने हाथ डाला, दो तीन चावल उठाए, मुंह में डाले। अली शाह माँ बाप ने 2-3 चावल के दाने मुंह में डाले, द्वारशीष दी, दूसरे घर में गए, उधर थोड़ा गुड़ खाया, तीसरे घर में गए बाजरे के कच्चे दाने खाए। इस तरह ये शापीर खोजों के घरों घर जाके कहीं अनाज खाया, कहीं चावल खाए, कहीं खंड खाई, कहीं गुड़ खाया, और दुआएं दे के आया। उनकी औलाद ये मेरे सामने बैठी है, मैं भी उनमें से हूं। पांच छह पीढ़ी में हाल यह है हमारे घरों के अंदर राजाओं महाराजाओं जैसे मकान हैं, उस जमाने का कंपेयर करो, मोटरे घर में हैं, बैंक बैलेंस है। कई बाइयां ऐसी हैं कबाट के सामने खड़ी होती हैं तो मालूम नहीं ये साड़ी पहनूं कि ये पहनूं, क्योंकि 30-40 साड़ियां हैं। और इधर भी ऐसा ही है, कुछ ऐसे भी हैं कि जिनके चार चार छह छह कोट सूट हैं। मेरा कहने का मकसद यह है कि उस मौला ने हमारे घरों में जाके जो हमें दुआएं दी, बरकत दी, आज ये हाल है। दूसरों से हमारी कौम ज्यादा आबाद है। मैं 2-3 दफा कह चुका हूं, शुक्र मेरे मौला का, 123 मुल्क देखे मैंने, लेकिन एक इस्माइली रस्ते का भिखारी नहीं देखा किधर भी। एक भी इस्माइली रस्ते पे भीख मांगता हुए इस मौला को मंजूर नहीं। उसका शुक्राना करो, उसको याद करो, उससे दुआएं मांगो, अपनी औलाद का भविष्य बने ये दुआएं मांगो, और उसको सारा दिन याद करो। और ऐ मोमिनों, मैं फिर आपको कह रहा हूं कि इधर खाया पिया, ऐश आराम किया, दुआ वगैरह पढ़ी, ठीक है, रूह का क्या? तो रूह के लिए परोड़िए उठो। जब आपने हज़रत इमाम के पास से बोल लिया तो प्रॉमिस किया कि मैं सुबह उठूंगा, अरे धनी से किया हुआ प्रॉमिस तो पूरा करो। घर पे रहो, आ सकते हो जमात खाने, बहुत अच्छा है, क्योंकि जमात खाने के अंदर रूहानियां और फरिश्ते हैं, हज़रत इमाम का घर है। लेकिन फिर भी चलो घर पे उठो, 3:30-4 बजे उठो, हाथ मुंह धो के जमीन पे बैठो, सीधा बैठो, दीवार का टेका मत लो। पहले ऐसे समझ के मौला हाजिर है, जो उसका दीदार किया है आपने, जारी दीदार, 2-5-10 बरस पहले कोई दीदार किया, उसको याद करो, तो याद करने से आपकी सुरती लग जाएगी, आपका ध्यान लग जाएगा। और फिर उसको कहो, या मौला मेरे गुनाह बख्श दे, मैं बहुत बेदरकार हो गया हूं, मेरी मदद कर, मेरा हाथ पकड़, मुझे दौरवनी दे, मेरी बदियां बुराइयां, मेरी मूर्खाइयां दूर कर दे, तेरे सिवा कोई नहीं। फिर आप वो दिया हुआ बोल है उसको याद करो, अगर बोल नहीं है तो भी उठो, याली का जाप करो, ईर्ष्या का जाप करो, एक ध्यान से मौला की बंदगी करो। 6 महीने, कदाचित 4 महीने, कदाचित 3 महीने, इसका आपको फर्क लग जाएगा, पता कि सचमुच इसमें कुछ चीज है। और जब अंतर की खुशी मिलेगी, ए मोमिनो, अगर आपको 1 करोड़ रुपए की लॉटरी मिले कैसे खुश होंगे, मगर सुबह की इबादत में जो खुशी आपको मिलेगी, खुदा की कसम, वो खुशी उससे बढ़ के। अपने स्वभाव को ठंडा करो। मैंने इधर आके थोड़ा महसूस किया है कि बहुत से घरों में वाइफ हस्बैंड के झगड़े हैं, भाई भाई के झगड़े हैं। हमारी जमात में ये चीज नहीं होनी चाहिए। औरत की इज्जत करो। जिस घर में, ये बात भी मैं बहुत दफा कहता आया हूं, 15-20 बरस से बोलता हूं, जिस घर में औरत की इज्जत नहीं, उस घर में बरकत नहीं। यहां औरत का मतलब वाइफ नहीं, मां औरत है, दादी, नानी, मामी, चाची, फूई, बहन, दिकरी, वाइफ, ये सब औरत जात है। जिस घर में औरत जात की इज्जत नहीं, उस घर में बरकत नहीं, उस घर पे आफतें उतरती हैं। औरत जो है वो खुदा ताला के हुक्म से दुनिया के अंदर आबादी पैदा करती है। नबी का जो प्रेम है, औरत का प्रेम, यानी मां का, खास तौर पे मां का प्रेम, इलाही प्रेम का सैंपल है। عورت کی بہت عزت کرو. محمد پاک رسول اللہ اصحابہ میں بیٹھے ہوں گے اور ماتا فاطمہ چھوٹی تھی, بی بی فاطمہ ابا کو ملنے آنے تو رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے اور جہاں بیٹھتے تھے تھوڑا ہٹ جاتے تھے اور بیٹی کو وہاں بٹھاتے تھے. عورت ذات کی عزت ہم کو رسول اللہ نے سکھائی. اس کے پہلے عورت کی عزت دنیا میں نہیں تھی, گائے بکری خریدی جاتی ہے, اس طرح سے عورت کو خریدتے تھے, مارتے تھے, دکھ دیتے تھے. اور اے مومنوں, عربستان میں ایسا بھی تھا کہ عورت کو مار کے اس کا گوشت پکا کے کھاتے تھے. ہم کو مذہب نے آدمی انسان بنایا, ہم اسماعیلی ہیں, حضرت امام کے روحانی بچے ہیں. ہمارے گھروں کے اندر خوشیاں ہوئے, برکتیں ہوئے, سکھ ہوئے, شانتی ہوئے, نعمتیں اترے. جس گھر میں کجیا کنکاس ہے برکت بھاگ جاتی ہے. اپنے سوبھاؤ کو شانت کرو, نمر بنو, سہن کرو. کسی نے اپمان کیا ہے تو آپ کا کیا بگڑا, اپمان میں کیا ہوا, آپ کی ٹوپی تو نہیں اتاری نا, کبھی گالی دی ہے یا کچھ بول گیا ہے. تو کتے تو رستے میں بہت بھونکتے ہیں, آپ کوئی آدمی کو کتا بھونکے تو کیا آدمی بھی اس کے سامنے بھونکے؟ یہی حال ہے کہ اگر کسی نے ہم کو کچھ پوچھ نیچ کہہ دیا درگزر کرو, پرواہ بھی نہ کرو, تو آپ کے دل کے اندر نہ تو غصہ آئے گا نہ کچھ اور ایسی خرابی پیدا ہوگی. گوشت کھانے والا, مرچیں کھانے والا, شراب پینے والا, سگریٹ پینے والا, اس کا اندر سہنشیلتا نہیں ہوتی. گوشت ویک میں ایک دن کھاؤ, گائے یا بکری کا کھاؤ, گائے کا مت کھاؤ. کیونکہ یہاں ہندوستان کی گائے کے اندر وہ چیز نہیں ہے کہ جو نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی گائےوں میں ہے. ہم ادھر بیف کھاتے ہیں, مگر یہاں آپ بیف مت کھاؤ, بکری کا گوشت کھاؤ ویک میں ایک دن, بن سکے تو مہینے میں ایک دن کھاؤ. ایک دن چکن کھاؤ, یعنی مرغی کھاؤ اگر پاسبل ہے, لیکن بھاجی بکالا بہت کھاؤ. بھاجی بکالے کے اندر اور مرغی گوشت کے اندر آج میں آپ کو ایک تفاوت بیان کرنا چاہتا ہوں. بھاجی پکانے کے اندر برین نہیں ہے, لائف ہے. اور مرغی بکرے گائے وغیرہ کے اندر برین ہے. آپ جب بھی مرغی کو پکڑتے ہو تو آپ نے جس نیت سے پکڑا, یعنی کہ اس کو ذبح کر کے گوشت کھانے کی نیت سے پکڑا, تو مرغی فوراً سمجھ جاتی ہے کہ مجھ کو اس نے مارنے کے لیے پکڑا ہے. تو اس کے برین میں سے ایک ایسنس نکلتا ہے جو ایکچولی ہارٹ پروڈیوس کرتا ہے, ایڈرینل ایسنس. یہ ایسے سارے آنکھیں بدن کے اندر پھیل جاتا ہے. جب آپ نے اس کو مار ڈالا, لہو نکل گیا. ہم کو اللہ نے حکم کیا ہے کہ جب یہ ذبح کرو تو لہو نکل جانا چاہیے, پھر بھی تھوڑا لہو اس کے گوشت میں رہے تو گیا. یہ کھانے سے ہم پوائزن کھاتے ہیں, جیب کے سواد کے لیے یا اس میں جو پروٹینز ہے اس کے لیے کھاؤ, کوئی منع نہیں ہے. لیکن اٹھواریے میں ایک دن, 15 دن میں ایک دن کھاؤ. پیر حسن کبیر دین کی 111 برس کی عمر تھی, پیر صدر دین کی 119 برس کی عمر تھی, پیر شمس کی 240 برس کی عمر تھی. لیکن پیر حسن کبیر دین کی بات کرتا ہوں کہ 111 برس کی عمر میں پیر حسن کبیر دین نے گوشت نہیں کھایا. لیکن ہمارے امام سلطان محمد شاہ نے کہا ہے کہ تھوڑا گوشت کھاؤ, اٹھواریے میں ایک دن گوشت کھاؤ, یا چکن کھاؤ, مچھلی زیادہ کھاؤ, لیکن بھاجی بکالا کھاؤ. اور بھاجی بکالا, اب میں یہ بائیوں کو کہہ رہا ہوں کہ تیل میں کہ گھی میں نہیں, پانی کے اندر تھوڑا پانی ڈال کے اس کو سٹیم کر کے پکاؤ تو اس میں پدارتھ رہ جاتے ہیں تندرستی کے لیے, اور خاص کر کے ہارٹ کے لیے یہ بھاجی بکالا بہت اچھا ہے. बाजी मकाला दूध दही ये चीजें खाने पीने से आदमी का जो दिमाग है वो थोड़ा ठंडा रहता है, और इसमें खास तौर पे याद शक्ति के लिए, और वो बच्चे के जो दम पछाड़ करने वाले हाइपर हैं, बहुत मस्ती तूफान करते हैं। बहुत दफा माए मेरे पास बच्चे नहीं आती है, मिशनरी पापा ये बहुत तूफानी है, अभी क्या करूं? तो उसके लिए मैं कहता हूं ये जो लौकी है, लौकी को क्या बोलते हैं? दूधिया। वीक में तीन चार दफा ऊपर का छिलका आस्तीन से अस्ते से निकाल के, बहुत पतले होती छील उसकी, उसको खरल कर लो, ग्रेट करो और दूध में उसको पकाओ, थोड़े बादाम पिस्ता डालो, ये हलवा अपने बच्चों को खिलाओ, और जिसका घर वाला बहुत तीखा है उसको खूब खिलाओ, ठंडा हो जाएगा। दूधी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, याद शक्ति के लिए अच्छा है, आंखों के तेज के लिए अच्छा है। कैरेट, गाजर, इमाम, ये बातें मैं इमाम सुल्तान मोहम्मद से सीखी है। हमको दारुसलाम उधर अफ्रीका में इमाम ने 1945 में एक तालिका भेजा, लंबा तालिका है, खाने पीने की चीजें, ये खाओ ये ना खाओ, ये खाओ ये ना खाओ। उसमें से मैं आपको निकाल के कह रहा हूं, क्योंकि उसमें दूधी का जिक्र नहीं है, लेकिन इमाम ने जनरली बातें की और हुक्म किया आखिर अफ्रीका में हर शुक्रवार को जुमे की रात 7 बरस तक मेरा ये तालिका पढ़ा, और पढ़ा गया। उसमें बोला ये कहते हैं गोश्त मत खाओ, कभी कभी खा लो, तीखी मरच मसाला मत खाओ, छाछ पियो, दूध पियो, गाजर खाओ, भाजी मकाला खाओ, चीज खाओ और चीज घर पे बनाओ। खासतौर पे दूधी का जिक्र करता हूं, दूधी में बहुत गुण है और दिमाग को शांत कर देने वाली चीज है। जब दिमाग शांत होता है तो अकल बढ़ती है, गुस्सा करने वाले की अकल बिगड़ती रहती है, उसमें सोचने की शक्ति घट जाती है, सहन शक्ति बढ़ घट जाती है। कैरेट खाया करो, कैरेट का भी हलवा बच्चों को खिलाओ कि जो स्कूल में अच्छी तरह से उनको काम आवे, उनका ब्रेन बढ़े। एक और चीज मैं अपने मौला के फरमान में से निकाल के आपको कहता हूं, और अल्लाह मेरे यहां जरूर करना, मौला मलगास्कर है, और मलगास्कर के अंदर बहुत सी ऐसी मौला के हुजूर में अर्जियां आई, ब्रेन ठीक नहीं है, गुस्सा बहुत है, वगैरह वगैरह। मैंने ये महसूस किया है कि यहां भी बहुत से भाई बहनों को डिप्रेशन की बीमारी है। डिप्रेशन में क्या होता है, आदमी को ऐसा लगता है मेरा कोई नहीं है। आदमी को यानी औरत के मर्द, जिस किसी को भी ये बीमारी हो गई डिप्रेशन, तो उसको ये फील होता है मेरा कोई नहीं, और फिर वो ऐसे ऐसे विचार करता है कि जो उसके लिए खराब है। इन्हीं में से कोई ना कोई जब हालत बिगड़ जाती है तो आघात कर लेता है। इसके लिए एक अच्छी सी अच्छी दवा जो सबके लिए काम आवे, और वो है कैस्टर ऑयल। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया कि हर आदमी महीने में एक दफा जरूर कैस्टर ऑयल पियो। कैस्टर ऑयल ब्रेन की कमजोरी, नर्वस सिस्टम की बीमारियों के लिए है, इससे अच्छी दवा और कोई नहीं। एक टीस्पून कैस्टर ऑयल थोड़े मद के साथ मिक्स करके रात का खाना खाने के 2 घंटे के बाद और सोने से 1 घंटा पहले, अगर आदमी दूध में या चाय में कैस्टर ऑयल पिए तो उसके शरीर के अंदर की पॉइजन निकल जाती है, आंतड़े साफ होते हैं, आंखों का तेज बढ़ता है, नींद अच्छी आती है, याद शक्ति अच्छी होती है, और स्वभाव ठंडा हो जाता है। इस तरह से एक और चीज भी इसके अंदर है, मैं खुद अपनी आंखों में वीक में 3-4 दफा कैस्टर ऑयल का एक एक टीपा मैं डालता हूँ। मैं 80 वर्ष का हूँ, मैंने कभी चश्मा नहीं पहना, न रीडिंग के लिए न ड्राइविंग के लिए। आंख के अलावा हमारे कान हैं। अगर कान खराब होते हैं, आंखें खराब होती हैं, नाक खराब होता है, गला खराब होता है, ये सारी चीजें हमारे ब्रेन के ऊपर असर करती हैं। अच्छी तंदुरुस्ती इबादत है, और अगर अच्छी तंदुरुस्ती है दिन दार हो तो सुबह की बैतुल ख्याल की इबादत में आपको बहुत मजा आएगा। बीमार आदमी इबादत नहीं कर सकता, इसलिए कि उसको वो दुख रहा है। अच्छी तंदुरुस्ती हासिल करना खुदा की इबादत में है, कि हमारा ये शरीर खुदा ने दिया है, इस शरीर को तंदुरुस्त रखना खुदा की इबादत है। तो ये सारी चीजें मिला के फिर मैं उधर आता हूं कि मीम मोहम्मद है सुखदेव। रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसल्लम उसका नूर पीरी नूर है। उसकी तस्बीह निकालो, सलवात पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करो, याली याली करो, सारा दिन कुछ न कुछ किसी न किसी नाम से मौला को याद करते रहो। इंशाअल्लाह आपकी बलाएं दूर होंगी, आपकी नेक उम्मीदें पूरी होंगी, आपके अरमान पूरे होंगे। जमीन आसमान की सब तकलीफें बलाएं दूर करे मौला, नेक उम्मीदें पूरी करे, ईमान की सलामती दे रहे मौला। आपकी आल औलाद को भी दिनों दुनिया के अंदर बरकतें दे रहे, उनका भी ईमान ज्यादा करे, फरमान बरदार मोमन बनाए, दसवन सुकृत में पूरा रखे, अच्छी तंदुरुस्ती दे रहे, तंदुरुस्ती वाली खुश जिंदगी लंबी दे रहे मौला। आपके घरों में जमातों में सलासम मोहब्बत इतफाक दे रहे मौला, आपको खुशियां दे रहे, बरकतें दे रहे, अपनी नियामतें दे रहे मौला। हमेशा आपको जुमले जमात को अपनी पनाह में, छतर छाया में, अपनी रहमत में, अपनी दुआ शीस में रखे, सुखी आबाद रहो।